नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार खरवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी में 11वीं कक्षा के लिए आज का विषय है निबंध। निबंध पर 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी का निबंध शब्द अंग्रेजी के ऐसे शब्द का अनुवाद है। अंग्रेजी का ऐसे शब्द फ्रेंच ऐसे ESSAI से बना है। ऐसे ESSAI का अर्थ होता है टू अटेम्प्ट, अर्थात प्रयास करना। ऐसे में एसेइस्ट अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है, अर्थात निबंध में निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप को पाठक के सामने प्रकट करता है। आत्म प्रकाशन ही निबंध का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। आधुनिक निबंधों के जन्मदाता फ्रांस के मॉन्तेन माने गए हैं। निबंध की परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा है, निबंध विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का सम्मिश्रण है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए वे आगे लिखते हैं, अपने निबंधों का विषय स्वयं मैं हूँ। ये निबंध अपनी आत्मा को दूसरों तक पहुँचाने के प्रयत्न मात्र हैं। इनमें मेरे निजी विचार और कल्पनाओं के अतिरिक्त कोई नूतन खोज नहीं है। यह परिभाषा निबंध की दो विशेषताओं की ओर संकेत करती है। पहला, निबंध में निबंधकार स्वयं को अभिव्यक्त करता है तथा दूसरा, वह पाठक से आत्मीयता स्थापित करता है। उसे शिक्षा या उपदेश नहीं देता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि निबंधकार की आत्मा भी व्यक्ति ही निबंध की प्रमुख विशेषता है। उनके शब्दों में आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि निबंध में निबंधकार खुलकर पाठक के सामने आता है। कोई दुराव नहीं, किसी प्रकार का संकोच अथवा भय नहीं। वह जो कुछ अनुभव करता है उसे अभिव्यक्त कर देता है। राग तत्व की प्रधानता एवं हृदय का आग्रह निबंध की विशिष्टता है। निबंध का सौंदर्य है प्रवाह। पाठक को निबंधकार भावधारा में अनायास प्रवाहित कराता है। सघन और तीव्र अनुभूतियों का निबंध में भावात्मक प्रकाशन होता है। भाव आकुल व्याकुल होकर सहज ही फूट पड़ते हैं। कहीं रुकावट नहीं, कहीं ठहराव नहीं। मानो हरिद्वार से गंगा की धारा फूटती हो तो सीधे उछलती कूदती, अनेक विचारों पत्थरों चिंतन कगारों से टकराती, प्रयाग में आकर सरस्वती और यमुना के साथ मिलती हो। यही कारण है कि निबंध के विषय की कोई सीमा रेखा नहीं है। विश्व की किसी वस्तु को लक्ष्य कर निबंध रचना संभव है, क्योंकि विषय तो एक बहाना भर है। मुख्य लक्ष्य निबंध के माध्यम से आत्म प्रकाशन है। निबंध मानसिक प्रतिक्रियाओं, भावनाओं एवं विचारों का एक संवरा रूप है। बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों को लीजिए। उन्होंने राजनीतिक विषय अवश्य चुने हैं, किंतु अपने व्यक्तित्व से उन्होंने विषय को घुला मिला दिया है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र तथा सरदार पूर्ण सिंह आदि श्रेष्ठ निबंधकारों ने ऐसा ही किया है। सच तो यह है कि निबंधकार जीवन के स्नैप्स खींचता है। जीवन के किसी कोने में झांक कर वह जो कुछ पाता है और उसके मन में उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उसे ही वह निबंध के माध्यम से व्यक्त करता है और वह अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ढाल देता है। वह किसी सिद्धांत या मत का प्रतिपादन नहीं करता। कोई सिद्धांत भी स्थिर नहीं करता। मनोनीत विषय को अपने व्यक्तित्व के रस में पाग कर अभिव्यक्त करता है। निबंध, प्रबंध और लेख। कुछ लोग निबंध, प्रबंध और लेख इन तीनों में कोई अंतर नहीं मानते। मेरे विचारानुसार निबंध, प्रबंध और लेख में स्पष्ट अंतर है। प्रबंध में व्यक्तित्व उभर कर नहीं आता। लेखक परोक्ष रूप में रहकर अपनी ज्ञान चातुरी, दृष्टि सूक्ष्मता, प्रकाशन पद्धति और भाषा शैली उपस्थित करता है। प्रबंध आकार में निबंध से 10-20 गुना बड़ा भी हो सकता है। उसमें निबंध की अपेक्षा विद्वता अधिक रहती है। निबंध में निजी अनुभूति और विचार का प्राधान्य रहता है और प्रबंध में समाजशास्त्र, लोक संग्रह और पुस्तकीय ज्ञान का। मराठी के प्रसिद्ध लेखक श्री देशपांडे के शब्दों में, प्रबंध में लेखक पाठकों को उपदेश रूपी करवी कुनैन की गोली चबाने का आदेश देता है, किंतु निबंध में लेखक उन्हें सुगर कोटेड कुनैन की गोली निगलने को कहता है और पाठक हंसते हंसते वैसा करते हैं। प्रबंधकार अपने बारे में कुछ नहीं कहता, किंतु निबंधकार अपनी पसंदगी, नापसंदगी, आचार विचार के संबंध में खुलकर पाठकों से विचार विमर्श करता है। प्रबंध की भाषा और शैली प्रौढ़, गंभीर और नपी तुली होती है, किंतु निबंध की लेखन शैली रमणीक और स्वच्छंद होती है। प्रसाद गुण निबंध की आत्मा है। भाव गीतों की तरह निबंध भी सुगम और सरस होता है। प्रबंध के विषय गंभीर और ज्ञानपूर्ण होते हैं, किंतु निबंध का विषय कोई प्रसंग, भावना या कोई क्षुद्र वस्तु या स्थल बनता है, क्योंकि वहाँ विषय की अपेक्षा विषय अधिक महत्वपूर्ण होता है। निबंध और प्रबंध की तरह निबंध और लेख में भी अंतर है। लेख को अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं और पत्र, समाचार पत्र, विश्वकोश इत्यादि में पाई जाने वाली वह रचना जो विषय का स्पष्ट और स्वतंत्र निरूपण करती है, लेख कहलाती है। अस्तु, प्रबंध की तरह लेख भी विषयगत होता है। सांगोपांग रूप से विषय का प्रतिपादन ही लेख की प्रधान विशेषता है। इसमें लेखक की आत्माभिव्यक्ति का अभाव नहीं रहता, पर उसकी प्रधानता भी नहीं रहती, जबकि आत्माभिव्यक्ति निबंध का लक्ष्य है। अतः निबंध और लेख दोनों दो भिन्न साहित्यिक विधाएं हैं। अब आते हैं निबंध की विशेषताएं पर। निबंध की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, व्यक्तित्व का प्रकाशन। दूसरा, संक्षिप्तता। तीसरा, एक सूत्रता। और चौथा, अन्विति का प्रभाव। निबंध रचना का प्रथम लक्ष्य है व्यक्तित्व का प्रकाशन। निबंध में निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप से पाठक के सामने प्रकट होता है। वह पाठकों से मित्र की तरह खुलकर सहज संलाप करता है। यही कारण है कि मैदान की स्वच्छ हवा में कुछ देर टहलने से चित्त को जिस प्रकार प्रसन्नता और उत्साह की प्राप्ति होती है, निबंध पढ़ने पर मन को वैसा ही आह्लाद होता है। अतः निबंध की सर्वप्रथम विशेषता है व्यक्तित्व का प्रकाशन। निबंध की दूसरी विशेषता है संक्षिप्तता। निबंध जितना छोटा होता है, जितना अधिक गठा होता है, उसमें उतनी ही सघन अनुभूतियाँ होती है और अनुभूतियों में गठाव कसाव के कारण तीव्रता रहती है। फलतः निबंध का प्रभाव पाठक पर सर्वाधिक पड़ता है। निबंध की सफलता श्रेष्ठता उसकी संक्षिप्तता है। शब्दों का व्यर्थ प्रयोग निबंध को निकृष्ट बनाता है। श्रेष्ठ और सरल निबंध की तीसरी विशेषता है एक सूत्रता। कुछ लोगों के विचारानुसार निबंध में क्रम अथवा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं। निबंध में निबंधकार स्वयं को अभिव्यक्त करता है, साथ ही उसमें भावों का आवेग भी रहता है। फिर भी निबंध में वैयक्तिक विशेषता का अर्थ कदापि नहीं होता कि निबंधकार पागलों की तरह अर्थहीन भावहीन प्रलाप करे, बल्कि सफल निबंधकार में चिंतन का प्रकाश रहता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में व्यक्तिगत विशेषता का मतलब यह नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही ना जाए या जानबूझकर उसे जगह जगह से तोड़ दिया जाए, भावों की विचित्रता दिखाने के लिए अर्थ योजना की जाए जो अनुभूति के प्राकृत या लोक सामान्य स्वरूप से कोई संबंध ही ना रखे, अथवा भावों से भाषा से सर्कस वालों की सी कसरतें या हठ योगियों के से आसन कराए जाए जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवा और कुछ ना हो। निबंध की अंतिम विशेषता है अनविति का प्रभाव। जिस प्रकार एक चित्र की अनेक असंबद्ध रेखाएं आपस में मिलकर एक संपूर्ण चित्र बना पाती है, अथवा एक माला के अनेक पुष्प एक सूत्रता से ग्रंथित होकर ही माला का सौंदर्य ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार निबंध के प्रत्येक विचार चिंतन, प्रत्येक भाव तथा प्रत्येक आवेग में अन्वित होकर संपूर्णता के प्रभाव की सृष्टि करते हैं। अब निबंध की शैली के संबंध में चर्चा करते हैं। लिखने के लिए दो बातों की आवश्यकता है, भाव और भाषा। दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। बिना संयत भाषा के अभिप्रेत भाव व्यक्त नहीं होता। लिखने के लिए जिस तरह परिमार्जित भाव की आवश्यकता है, उसी तरह परिमार्जित भाषा की भी। एक के अभाव में दूसरे का महत्व नहीं है। भाव और भाषा को समन्वित करने के ढंग को शैली कहते हैं। वस्तुतः जहाँ परिमार्जित भाव और परिमार्जित भाषा का मेल होता है, वहीं शैली बनती है। जहाँ दोनों में से किसी एक का अभाव हो, वहाँ शैली का कोई प्रश्न ही नहीं होता। अच्छी शैली वह है जो पाठक को प्रभावित करे। वह पाठक को शब्दों की उलझन में नहीं डालती। लेखक का अभिप्राय पाठक को इस प्रकार आक्रांत कर लेता है कि वह उसे अन्य बातों की ओर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छी शैली से भाषा भाव के लिए भार स्वरूप नहीं होती, बल्कि वह पाठकों को भाव हृदयंगम कराने में मार्गदर्शक का काम करती है। बुरी शैली वह है जो पाठक को शब्दों की भूल भुलैया में फंसाए रखती है। यहाँ पाठकों के लिए लेखक का अभिप्राय गौण हो जाता है और शब्दों की उलझन से निकलने के उद्योग में उसकी शक्ति का अपव्यय होता है। यदि भाव विश्रृंखल और अपरिमार्जित हुए तो पाठक का जी प्रवेश द्वार पर ही ऊब जाएगा, भाव तक पहुँचने का धैर्य उसमें नहीं रह जाएगा। प्रत्येक लेखक के भाव और भाषा में अंतर होता है, इसलिए उसकी शैली में भी अंतर होगा। भाषा के दृष्टिकोण से प्रधानतः दो शैलियाँ हैं, प्रसाद शैली तथा समास शैली। अति साधारण ढंग से सहज सुगम भाषा में बात कहना प्रसाद शैली है। छोटे छोटे वाक्य, साधारण शब्द और कहने का ढंग सुगम, इस शैली का लक्ष्य होता है सुबोधता, सबके लिए बात ग्राह्य हो, बोधगम्य हो और सुगम हो। सहजता इस शैली का वह प्रधान गुण है। एक अच्छे लेखक की शैली में प्रसाद गुण का होना स्वाभाविक है। वह अपनी बातों को कभी उलझाकर नहीं कहता, अतः उसकी भाषा सहज और सुगम होती है, वाक्य सरल होते हैं। प्रसाद शैली में गंभीर से गंभीर भावों को साधारण शब्दों में अभिव्यक्त किया जाता है। किसी बात को कठिन शब्दों में कहना, साधारण भाषा का प्रयोग न कर असामान्य भाषा का प्रयोग समास शैली का लक्ष्य है। भाषा कठिन, दुरूह एवं जटिल होती है। शब्द प्रायः संस्कृत के अर्थात तत्सम होते हैं और उन शब्दों को भी संधि समास द्वारा संक्षिप्त कर लिया जाता है। वाक्य मिश्र और संश्लिष्ट होते हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि भाव के गांभीर्य एवं जटिलता के कारण भाषा दुरूह एवं जटिल नहीं होती, बल्कि स्वयं भाषा ही जटिल होती है। यह शैली भाव की कमी छिपाने के लिए भाषा के सामासिक गठन को अपना उद्देश्य मानती है। इसलिए यह शैली उन्हीं लेखकों के लिए उपयुक्त है जिन्हें वस्तुतः कुछ कहना नहीं है, केवल वाक जाल का निर्माण करना है। उक्त दो प्रकार की शैलियों में प्रथम प्रकार की प्रसाद शैली में ही छात्रों को अपने निबंध लिखने चाहिए। फिर भी निबंध की कोई निश्चित शैली नहीं होती। प्रत्येक निबंधकार अपने ढंग से निबंध लिखने के लिए स्वतंत्र है। निबंध साहित्य का एक स्वतंत्र अंग है, अतः इसे नियमों से नहीं बांधा जा सकता। पर सुगठित निबंध लिखने के लिए तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए: विषय निरूपण या भूमिका, व्याख्या तथा तीसरा निष्कर्ष। विद्यार्थी को अपने मत अथवा विचारों का निरूपण सर्वप्रथम करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से विचारों का प्रतिपादन करता है। सबकी विचारधारा तथा चिंतन प्रणाली भिन्न होती है। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से अपने विषयों को ग्रहण करता है, अतएव हर व्यक्ति के विचार की रीति भिन्न हुआ करती है। कोई प्रारंभ में ही अपने विचारों का निचोड़ एक दो पंक्ति में रख देता है, कोई अपने विचारों का क्रमिक विभाजन करता है और कोई सूत्र शैली में अपनी बात कह डालता है। इस प्रकार कथन के ढंग अनेक और भिन्न होते हैं। विद्यार्थियों को भूमिका के रूप में विषय का संक्षिप्त परिचय देना चाहिए। जिस दृष्टिकोण से निबंध लिखा जाए, उसी दृष्टिकोण से भूमिका भी लिखी जानी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखे निबंध में विषय का संक्षिप्त परिचय भी उसी दृष्टिकोण से देना चाहिए। ऐतिहासिक तथा भावात्मक निबंधों के विषय में ऐसा ही करना चाहिए। विश्लेषण निबंध का सार अंश है। यहाँ विद्यार्थी को विषय का विश्लेषण कर समुचित रूप से उस पर प्रकाश डालना चाहिए। उस विषय को कई खंडों में बांटना चाहिए और एक अनुच्छेद में एक ही खंड पर प्रकाश डालना चाहिए। बातों में सिलसिला होना चाहिए। जो बात पहले लिखी जाए, उसे पीछे लिखने से निबंध का महत्व घट जाता है। इस अंश में दूसरों के अनुकूल मतों की पुष्टि और प्रतिकूल मतों का सहृदयतापूर्वक खंडन भी किया जा सकता है। समाप्ति या निष्कर्ष में ऊपर कही गई बातों का सारांश दो चार पंक्तियों में बहुत ही सुंदर ढंग से देना चाहिए। अंत इस तरह का हो कि पाठक को जान पड़े कि अब इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। भावात्मक निबंध में भी लेखक अपनी रुचि के अनुसार समाप्ति वाक्य लिख सकता है, किंतु प्रत्येक दशा में यह ध्यान रखना चाहिए कि समाप्ति वाक्य ऐसे हो कि निबंध के सौंदर्य और सरलता को बढ़ा दे, साथ ही स्थापित विचारों के पोषक भी हो। धन्यवाद।